एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर, एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर तरफ सुनाई देता है, खबरों में, बहसों में, लोक लुभावनवाद,
पॉपुलिज्म जिसे कहते हैं।
हाँ बिल्कुल,
ये शब्द जैसे हवा में है आजकल, दुनिया भर की राजनीति में छाया हुआ है।
और उसे ठीक से समझने के लिए आज हम खास तौर पे बात करेंगे डच राजनीतिक वैज्ञानिक कैस मोडे की, उनके काम, उनके नजरिए पर। लोक लुभावनवाद पर उनका काम काफी अहम माना जाता है।
जी, उनकी एक किताब भी है पॉपुलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, काफी चर्चित है, वो इस विषय पर काफी रोशनी डालती है।
और ये समझना आज इतना जरूरी क्यों हो गया है, मतलब हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक ताकत बन चुका है। दुनिया भर में चुनावों के नतीजों को, सरकारों की नीतियों को, यहां तक कि लोकतंत्र के पूरे स्वरूप को ये बदल रहा है।
सही कहा, इसके बिना आजकल की पॉलिटिक्स को समझना, वो जो पहेली है उसे सुलझाना वाकई मुश्किल है। हम सब ये शब्द इस्तेमाल तो करते हैं, पर शायद इसका ठीक ठीक मतलब हमेशा साफ नहीं होता।
हाँ बिल्कुल, और कैस मोडे का काम यही मदद करता है। वो कोशिश करते हैं कि इस धुंध को साफ किया जाए, एक ठहरा हुआ, एक विश्लेषणात्मक नजरिया दिया जाए।
तो चलिए पहले थोड़ा जानते हैं कि ये कैस मोडे हैं कौन, कहां से आते हैं, क्या करते हैं।
जी, कैस मोडे, जैसा आपने कहा, नीदरलैंड्स के राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। फिलहाल वो अमेरिका की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और साथ ही नॉर्वे में ऑस्लो यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है अतिवाद पर रिसर्च करने वाला, उससे भी जुड़े हुए हैं।
और उनकी खासियत क्या है, मतलब उन्हें क्यों इतना अहम माना जाता है इस विषय पर?
देखिए, उन्हें दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में गिना जाता है, खासकर लोक लुभावनवाद, राजनीतिक अतिवाद और यूरोप की राजनीति पर। और उनकी बात इसलिए वजन रखती है क्योंकि ये हवा हवाई नहीं है, दशकों की रिसर्च है इसके पीछे, जमीनी हकीकत पर आधारित है।
अच्छा।
हाँ, और खास बात यह है कि वो सिर्फ थ्योरी में नहीं उलझे रहते, वो असल दुनिया की राजनीति को देखते हैं। यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका, अलग अलग जगहों के आंदोलनों को स्टडी करते हैं। और मजे की बात यह है कि वो इन चीजों पर तब से लिख रहे हैं जब ये इतनी ट्रेंडिंग भी नहीं थी।
अरे वाह, तो मतलब वो सिर्फ हाल की घटनाओं पर रिएक्ट नहीं कर रहे, बल्कि लंबे समय से इन ट्रेंड्स को देख रहे हैं। और उनके नजरिए में, उनके अप्रोच में क्या खास है?
सबसे खास बात शायद उनका बैलेंस नजरिया है। वो लोक लुभावनवाद को सीधे सीधे अच्छा या बुरा, हीरो या विलन ऐसे नहीं देखते, वो उसे एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं।
विचारधारा?
हाँ, वो इसे आइडिएशनल अप्रोच कहते हैं, मतलब लोक लुभावनवाद को विचारों के एक सेट के रूप में देखना। उनका टोन भी अक्सर काफी शांत और तथ्यों पर आधारित होता है, जो आजकल मीडिया में अक्सर देखता है ना, पैनिक वाला माहौल, उससे बिल्कुल अलग।
ये दिलचस्प है। तो चलिए उनके मुख्य विचारों पर आते हैं। उनकी किताब या उनके काम का मुख्य मकसद क्या है?
देखिए, मुख्य मकसद है लोक लुभावनवाद को लेकर जो इतना कन्फ्यूजन है, जो भ्रम है, उसे दूर करना। वो एक साफ सुथरी परिभाषा देना चाहते हैं, एक फ्रेमवर्क देना चाहते हैं जिससे हम समझ सकें कि भाई ये है क्या चीज, ये काम कैसे करती है और लोकतंत्र के लिए इसके मायने क्या हैं।
और ये सिर्फ मतलब अकादमिक लोगों के लिए ही नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हम सबके लिए, आम नागरिक, पत्रकार, नेता, पॉलिसी मेकर्स, हर कोई जो आज की दुनिया, आज की राजनीति को समझना चाहता है। मुडे का मानना है कि अगर हम इसे ठीक से परिभाषित ही नहीं करेंगे तो ना तो हम ये समझ पाएंगे कि लोग इसकी तरफ क्यों खिंच रहे हैं,
हाँ,
नहीं इसके असली कारणों का पता लगा पाएंगे और न ही कोई सही जवाब सोच पाएंगे।
सही बात है। तो फिर मुरिलो का सबसे बड़ा तर्क क्या है, उनकी सबसे खास बात क्या है, लोक लुभावनवाद को वो कैसे देखते हैं?
उनका सबसे मशहूर आइडिया, जो आपने शायद सुना भी हो, वो ये है कि लोक लुभावनवाद एक पतली विचारधारा है, थिन सेंटर्ड आइडियोलॉजी।
पतली विचारधारा, ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब यह है कि ये जैसे लिबरलिज्म है या सोशलिज्म है, वैसी मोटी विचारधारा नहीं है। मतलब वो आपको समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, सबका एक पूरा खाका, एक पूरा नक्शा देती है ना।
हाँ, उनका एक पूरा विश्व दृष्टिकोण होता है।
बिल्कुल, लोक लुभावनवाद वैसा नहीं है, इसका अपना कोई बहुत विस्तृत कार्यक्रम या वर्ल्ड व्यू नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत साफ, बहुत मजबूत कोर या केंद्र जरूर होता है।
अच्छा, और वो कोर क्या है?
वो कोर है समाज को दो हिस्सों में बांटकर देखना, एकदम दो विरोधी खेमे। एक तरफ हैं सच्चे नेक लोग,
द प्योर पीपल, हाँ,
वर्क द करप्ट एलीट। और ये बंटवारा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये नैतिक है,
मॉरल।
हाँ, अच्छे बनाम बुरे की लड़ाई जैसा।
अच्छा, तो ये लोक बनाम एलीट वाली जो बात हम सुनते हैं अक्सर, वही इसके केंद्र में है। और लोक लुभावनावाद मानता है कि राजनीति का मतलब होना चाहिए इन सच्चे लोगों की जो आम इच्छा है, जिसे वो जनरल विल कहते हैं, उसको सीधे सीधे लागू करना, कोई बीच की रुकावटें जैसे अदालतें, मीडिया, ये सब उन्हें पसंद नहीं।
एकदम सही कहा आपने। तो मुड़े की परिभाषा की जड़ में यही नैतिक विभाजन है, अच्छे लोग बनाम बुरे एलीट। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एलीट सिर्फ नेता नहीं होते।
हाँ, और कौन?
इसमें आर्थिक एलीट भी आ सकते हैं, बड़े कॉरपोरेट, बैंकर्स, सांस्कृतिक एलीट, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, आर्टिस्ट, एक्टिविस्ट, और हाँ, मीडिया वाले भी। इन सबको जनता से कटा हुआ, सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचने वाला माना जाता है।
अच्छा, और वो पतली विचारधारा वाली बात फिर से, वो पतली क्यों है, इस पर थोड़ा और बताइए।
पतली इसलिए क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसका अपना पूरा ढांचा नहीं है। ये अकेली खड़ी नहीं रह सकती। इसे टिकने के लिए किसी मेजबान विचारधारा का सहारा चाहिए होता है, होस्ट आइडियोलॉजी जिसे कहते हैं।
मेजबान विचारधारा?
जैसे?
जैसे ये राष्ट्रवाद के साथ जुड़ सकती है।
हाँ।
या फिर समाजवाद के साथ, या किसी और चीज के साथ, जैसे क्षेत्रवाद हो या कोई धार्मिक विचार। तो हमें दक्षिणपंथी लोक लुभावनावाद भी दिखता है और वामपंथी भी।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब मूल ढांचा लोग बनाम एलीट वही रहता है, लेकिन ये अलग अलग रंग अपना लेता है, अलग अलग मेजबान के साथ जुड़कर। दुनिया भर में उदाहरण होंगे इसके।
हाँ बिल्कुल, मूडे अपनी किताब में कई उदाहरण देते हैं। जैसे लैटिन अमेरिका में देखिए, ह्यूगो शावेज वेनेजुएला में, या इवो मोरालेस बोलिविया में। ये वामपंथी लोक लुभावनावाद के उदाहरण थे। इनका निशाना कौन सा था? अमेरिकी साम्राज्यवाद, देश का अमीर तबका, और वो समाजवाद, राष्ट्रीयकरण की बातें करते थे।
और यूरोप में?
यूरोप में आजकल हम ज्यादातर दक्षिणपंथी लोक लुभावनावाद की बात सुनते हैं, है ना?
हाँ, ज्यादातर वही हावी रहा है हाल के सालों में। जैसे फ्रांस में मरीन लेपेन, या इटली में भी जॉर्जिया मेलोनी, या हंगरी में विक्टर ओरबान। इनका जोर राष्ट्रवाद पर होता है, अपनी संस्कृति को बचाने पर, और खासकर आप्रवासन, इमिग्रेशन के विरोध पर। इनके लिए एलीट कौन है? देश के पारंपरिक नेता, ब्रसेल्स में बैठे यूरोपियन यूनियन के ब्यूरोक्रेट्स, अंतर्राष्ट्रीय संगठन।
लेकिन यूरोप में वामपंथी उदाहरण भी हैं?
हाँ बिल्कुल हैं। जैसे स्पेन में पोडेमोस पार्टी उभरी, या ग्रीस में सिरिज़ा। ये खासकर 2008 के आर्थिक संकट के बाद सामने आए। इनका निशाना कौन था? बैंक, वित्तीय संस्थान, और वो जो कटौती की नीतियां थी, ऑस्टेरिटी पॉलिसीज, उनके खिलाफ थे।
और अमेरिका? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का उदय, वो तो शायद सबसे बड़ा और हालिया उदाहरण है।
हाँ बिल्कुल, उनका अमेरिका फर्स्ट का नारा, दलदल साफ करो, ड्रेन द स्वाम्प वाली बात, मीडिया को लगातार फेक न्यूज कहना, ये सब क्लासिक लोक लुभावन राजनीति है। सच्चे अमेरिकी लोग बनाम वॉशिंगटन का एलीट, और ये जुड़ा था राष्ट्रवाद और नेटिविज्म यानी अप्रवासन विरोध के साथ।
तो पैटर्न साफ है, बुनियादी ढांचा वही, पर स्थानीय रंग, स्थानीय मुद्दे, इतिहास, ये सब मिलकर उसका रूप तय करते हैं। ये पतली विचारधारा की जो बात है, वो काफी लचीली होती है, इसका मतलब।
बिल्कुल, यही उसकी खासियत है।
अच्छा, इन आंदोलनों में नेता की भूमिका कितनी अहम होती है? आपने ट्रंप, शावेज, लपेन का जिक्र किया।
बहुत ज्यादा। लोक लुभावनवाद में नेता का करिश्मा, उसका व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। वो अक्सर खुद को कैसे पेश करते हैं? आम आदमी की तरह, जो सिस्टम से बाहर का है, जो एलीट की बनावटी भाषा नहीं बोलता। वो सीधे लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी साधारणता दिखाते हैं।
और उनका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्टाइल, वो भी कुछ खास होता है।
हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, वो अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया पर हमला करते हैं, उसे एलीट का हिस्सा, भ्रष्ट बताते हैं, और कोशिश करते हैं उसे बाईपास करने की।
कैसे?
रैलियों से, सोशल मीडिया से।
हाँ,
बड़ी बड़ी रैलियां जहां वो सीधे अपने समर्थकों से बात करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये उनके लिए बहुत पावरफुल टूल बन गए हैं। इससे नेता और समर्थकों के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है, जिसमें मीडिया या पार्टी का ढांचा बीच में नहीं आता।
और ये आंदोलन या पार्टियां संगठनात्मक रूप से कैसी होती हैं? क्या सबका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है?
नहीं, मुड़े बताते हैं कि इसमें भी काफी फर्क होता है। कुछ आंदोलन पूरी तरह एक करिश्माई नेता के इर्द गिर्द सिमटे होते हैं। नेता गया तो आंदोलन खत्म। दूसरी तरफ कुछ दशकों पुरानी व्यवस्थित राजनीतिक पार्टियां भी हो सकती हैं, जो लोक लुभावन बन जाती हैं। ये उस देश के राजनीतिक सिस्टम, इतिहास, इन सब पर निर्भर करता है।
अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोक लुभावनवाद इतना बढ़ क्यों रहा है? दुनिया भर में हम इसका उभार क्यों देख रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे?
ये मिलियन डॉलर सवाल है, और मुड़े कहते हैं कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। वो इसे समझाने के लिए मांग और आपूर्ति का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं, डिमांड और सप्लाई का।
डिमांड और सप्लाई जैसे इकोनॉमिक्स में होता है।
हाँ, कुछ कुछ वैसा ही। मांग यानी डिमांड साइड का मतलब है कि वोटरों में ऐसी कौन सी जरूरतें, शिकायतें या इच्छाएं हैं जिनकी वजह से वो लोक लुभावन विकल्पों की तरफ देख रहे हैं।
जैसे कि
इसमें कई चीजें आ सकती हैं। आर्थिक कारण जैसे बढ़ती बेरोजगारी, नौकरियों की असुरक्षा, बढ़ती हुई असमानता, ये महसूस करना कि वैश्वीकरण से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा हुआ है, बाकी पीछे रह गए हैं।
और सांस्कृतिक कारण?
हाँ, वो भी अहम है। जैसे आप्रवासन को लेकर चिंताएं, राष्ट्रीय पहचान को लेकर सवाल, समाज में जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जैसे जेंडर रोल्स बदल रहे हैं, परिवार की परिभाषा बदल रही है, उसको लेकर एक तरह की बेचैनी।
और राजनीतिक कारण भी होंगे।
बिल्कुल, शायद सबसे अहम, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार से निराशा, ये महसूस करना कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो सब एक जैसी हैं, वो आम लोगों की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ एलीट के हितों का ध्यान रखती हैं, सिस्टम से मोह भंग जिसे कहते हैं।
ये तो हुई मांग की बात। अब आपूर्ति यानी सप्लाई साइड में क्या आता है?
सप्लाई साइड में वो चीजें आती हैं जो लोक लुभावन नेताओं और पार्टियों को इन मांगों का फायदा उठाने और सफल होने में मदद करती हैं।
अच्छा,
जैसे?
जैसे
जैसे करिश्माई नेताओं का सामने आना, ऐसे नेता जो लोगों की नब्ज पकड़ सकें, उनकी भाषा बोल सकें, उनकी भावनाओं को आवाज दे सकें। दूसरा, मीडिया का बदलता हुआ माहौल, 24 घंटे न्यूज चैनल जो सनसनी फैलाते हैं, और खासकर सोशल मीडिया जिसने पारंपरिक मीडिया और पार्टियों का गेटकीपिंग वाला रोल कमजोर कर दिया है। अब कोई भी सीधे लाखों लोगों तक पहुंच सकता है।
और शायद मेनस्ट्रीम पार्टियों की अपनी कमजोरियां।
हाँ, मुड़े इस पर बहुत जोर देते हैं, मुख्यधारा की पार्टियों की विफलताएं, उनका लोगों की असली चिंताओं को न समझ पाना या समझकर भी नज़रअंदाज कर देना, या फिर उनके पास उन समस्याओं का कोई ठोस जवाब न होना, ये सब मिलकर लोक लुभावन नेताओं के लिए जगह बनाता है।
तो मतलब कोई एक कारण नहीं, बल्कि इन सब चीजों का मेल, एक कॉम्बिनेशन जिम्मेदार है।
बिल्कुल, ये एक जटिल पहेली है जिसके कई टुकड़े हैं, और वो सब मिलकर ये तस्वीर बनाते हैं।
अब आते हैं सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, लोक लुभावनवाद और लोकतंत्र का रिश्ता क्या है? क्या ये लोकतंत्र का दोस्त है या दुश्मन या कुछ और?
यहीं पर मुड़े का विश्लेषण सबसे ज्यादा नुकीला और दिलचस्प हो जाता है। वो एक बहुत बारीक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना सीधा नहीं है कि हम इसे लोकतंत्र विरोधी कह दें। उनका तर्क है कि लोक लुभावनवाद लोकतांत्रिक, प्रो डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन उदार विरोधी, एंटी लिबरल है।
लोकतांत्रिक पर उदार विरोधी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसे थोड़ा और समझाइए। लोकतांत्रिक कैसे है?
लोकतांत्रिक इसलिए क्योंकि ये लोगों की इच्छा पर, लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बहुत ज्यादा जोर देता है। ये लोकतंत्र के इस मूल विचार को सीरियसली लेता है कि आखिरी शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए। बुढ़िया यहां तक कहते हैं कि कभी कभी ये लोकतंत्र के लिए एक सुधारक या करेक्टिव का काम भी कर सकता है।
करेक्टिव कैसे?
उन आवाजों या मुद्दों को सामने लाकर जिन्हें सिस्टम नजरअंदाज कर रहा था, उन लोगों को राजनीति से दोबारा जोड़कर जो उससे कट गए थे, एक तरह से ये लोकतंत्र को जगाने का काम कर सकता है।
ओके, ये तो हुई लोकतांत्रिक होने की बात, लेकिन फिर ये उदार विरोधी क्यों है? उदारवाद से इसे क्या दिक्कत है?
दिक्कत ये है कि जो उदार लोकतंत्र है वो सिर्फ बहुमत का राज नहीं होता, उसमें और भी बहुत कुछ होता है।
क्या क्या?
जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा। हाँ, कानून का शासन यानी कानून सबके लिए बराबर हो, शक्तियों का बंटवारा यानी सरकार की ताकत पर अंकुश हो, स्वतंत्र संस्थाएं हों जैसे आजाद न्यायपालिका, आजाद मीडिया।
अच्छा,
लोकलुभावनवाद इन सब उदारवादी चीजों को शक की निगाह से देखता है। उसे लगता है कि ये सब लोगों की सच्ची इच्छा के रास्ते में रोड़े हैं, ये एलीट के बनाए हुए हथियार हैं जिनसे वो आम लोगों की आवाज को दबाते हैं।
तो उन्हें लगता है कि ये सब कायदे कानून, ये संस्थाएं, ये असल में लोगों की मर्जी को पूरा होने से रोकती हैं।
हाँ बिल्कुल, और इसीलिए जब लोकलुभावन नेता सत्ता में आते हैं तो अक्सर हम क्या देखते हैं, वो इन्हीं उदारवादी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। अदालतों पर दबाव बनाना, जजों को धमकाना, मीडिया को कंट्रोल करना या उसे डराना, विरोधियों को देशद्रोही या जनता का दुश्मन बताना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को नजरअंदाज करना।
और इससे क्या होता है?
इससे जन्म होता है उसका, जिसे मूड़े और दूसरे विद्वान अनुदार लोकतंत्र, इलिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां चुनाव तो होते हैं, शायद निष्पक्ष भी हों, लेकिन लोकतंत्र की जो आत्मा है, यानी उदारवादी मूल्य, नागरिक स्वतंत्रताएं, संस्थागत संतुलन, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। हंगरी में विक्टर ऑर्बान का शासन अक्सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है।
ये तो काफी गंभीर तस्वीर है, तो फिर इसका सामना कैसे किया जाए? अगर ये इतना जटिल है तो इसका जवाब क्या है?
मूढ़े कुछ आसान जवाबों से सावधान करते हैं। जैसे एक तरीका जो यूरोप में कभी कभी अपनाया गया है, लोक लुभावन पार्टियों पर पूरी तरह पाबंदी लगा देना, या उन्हें सरकार बनाने से रोकने के लिए बाकी सब पार्टियों का एकजुट हो जाना, जिसे कॉर्डन सैनिटेयर कहते हैं। मुड़े कहते हैं कि यह अक्सर उल्टा पड़ता है।
उल्टा क्यों?
क्योंकि इससे लोक लुभावन नेताओं का ये दावा और मजबूत होता है कि देखो, हम सच बोल रहे थे, ये सारा एलीट हमारे खिलाफ है, हमें दबाना चाहता है। ये उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने का मौका देता है।
और क्या उनकी नकल करना सही है? मतलब मेन स्ट्रीम पार्टियां भी वैसे ही लोक लुभावन भाषा बोलने लगें, वैसे ही मुद्दे उठाने लगें?
मुड़े इसके भी सख्त खिलाफ है। उनका मानना है कि इससे आप लोक लुभावन सोच को ही वैधता दे देते हैं। आप उनके मैदान पर खेलने लगते हैं जहाँ वो ज्यादा माहिर है।
तो फिर सही रास्ता क्या है?
हाँ, वही।
क्या है सही रास्ता?
मुझे के अनुसार सबसे टिकाऊ और सही रास्ता है उन असली समस्याओं, उन वास्तविक शिकायतों, उन लोकतांत्रिक कमियों पर ध्यान देना जिनकी वजह से लोक लुभावनवाद को जमीन मिलती है।
मतलब जड़ पर काम करना।
बिल्कुल। आर्थिक असुरक्षा का हल निकालना, सांस्कृतिक बदलाव पर ईमानदारी से बिना डरे संवाद करना, राजनीतिक सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा जवाबदेह बनाना, लोगों को ये महसूस कराना कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उनकी परवाह की जा रही है।
तो इस पूरी चर्चा से, कैसमुड़े के विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज क्या निकलते हैं अगर हमें 3-4 पॉइंट्स में समेटना हो?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे जरूरी बात है ये विरोधाभास, ये पैराडॉक्स के लोक लुभावनवाद एक ही साथ, एक ही समय में लोकतंत्र के लिए खतरा भी है और शायद उसकी कमियों का आईना भी। ये उदार लोकतंत्र को चुनौती देता है, पर लोकतंत्र के जनता का राज वाले पहलू पर जोर देता है। इस जटिलता को समझना बहुत जरूरी है।
हाँ, ये सफेद और काला नहीं है। दूसरी बात जो मुझे अहम लगती है वो है राजनीति का नैतिकरण। ये जो नेक लोग बनाम भ्रष्ट एलीट की कहानी है, ये राजनीति को कैसे बदल देती है? हर चीज सही गलत, अच्छे बुरे की लड़ाई बन जाती है। फिर समझौते की, बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश कम हो जाती है। ये हम अपनी रोजमर्रा की बहसों में भी देखते हैं, है ना?
बिल्कुल देखते हैं। तीसरी बात, वो पतली विचारधारा वाली प्रकृति, ये कैसे अलग अलग मुद्दों और विचारधाराओं, राष्ट्रवाद, समाजवाद, क्षेत्रवाद से जुड़कर अपना रूप बदल लेती है। ये इसकी ताकत भी है कि ये इतनी लचीली है, पर शायद इसीलिए ये गहरे, ठोस, लंबे समय तक चलने वाले नीतिगत समाधान देने में अक्सर कमजोर रहती है।
और चौथी बात जो मुड़े बार बार कहते हैं कि लोक लुभावनावाद शायद राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संकट का एक लक्षण है, सिम्टम है, बीमारी नहीं। क्या इसका बढ़ना ये दिखाता है कि हमारी मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, हमारी पार्टियां, हमारे नेता कहीं ना कहीं आम लोगों से दूर हो गए हैं, उनकी जरूरतों, उनकी चिंताओं को नहीं समझ पा रहे?
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पांचवां पॉइंट, मीडिया की भूमिका, खासकर नया मीडिया, सोशल मीडिया, कैसे ये चाहे अनचाहे लोक लुभावन आवाजों को ज्यादा मंच दे सकता है, उनके भड़काऊ बयानों को एम्पलीफाई कर सकता है। भारत के संदर्भ में भी सोचें तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं गूंजती भी लगती हैं। एलीट की आलोचना, राजनीतिक भाषा का तीखापन, मीडिया का ध्रुवीकरण।
मुड़े के कुछ विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या उनकी कोई खास कथन, कोई नोटेबल कोट्स हैं जो उनकी सोच का निचोड़ हो?
हाँ, कुछ बातें हैं जो उनके विश्लेषण को बहुत अच्छे से सामने रखती हैं। जैसे उनकी वो मूल परिभाषा, लोकल लुभावनावाद एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को दो एक जैसे और विरोधी समूहों में बटा हुआ मानती है, नेक लोग बनाम भ्रष्ट एलीट, और मानती है कि राजनीति लोगों की आम इच्छा की सीधी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। साफ है, यह सिर्फ बोलने का स्टाइल नहीं, एक पूरा नजरिया है।
और लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है। लोकतंत्र पर वो जो बारीक बात कहते हैं वो भी काफ़ी अहम है।
मतलब ये लोकतंत्र की एक खास बहुमत केंद्रित व्याख्या है जो अक्सर उदारवादी मूल्यों और संस्थाओं पर सवाल उठाती है। बिल्कुल, और कारणों पर उनकी ये बात बहुत सोचने वाली है। असली समस्या शायद खुद लोकलुभावनवाद नहीं बल्कि वो गहरी खराबी है जिसकी प्रतिक्रिया में ये उभरता है, यानी आज के लोकतंत्रों में प्रतिनिधित्व का संकट। ये सीधा इशारा है कि हमें सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करना बल्कि असली बीमारी यानी सिस्टम की कमियों को दूर करना होगा।
और मीडिया वाली टिप्पणी भी याद रखने लायक है। मीडिया लोकलुभावनवाद पैदा नहीं करता, लेकिन वो उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दे सकता है। मतलब मीडिया की भूमिका जरूर है, पर वो पूरी कहानी नहीं है।
तो ये सब जानने का, ये सब समझने का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फायदा? एक आम नागरिक के तौर पर हम इसका क्या करें?
मेरे ख्याल से सबसे पहली चीज तो ये है कि ये समझ हमें राजनीतिक भाषणों और दावों को बेहतर ढंग से परखने में मदद करती है। जब कोई नेता या कोई टिप्पणीकार लगातार हम लोग बनाम वो एलीट की बात करे, तो हम रुककर सोच सकते हैं, यहाँ हम लोग से किसका मतलब है? क्या इसमें सब शामिल है? और वो एलीट कौन है? क्या ये विभाजन वाकई इतना साफ है या इसे बनाया जा रहा है?
हाँ, और मीडिया कंज्यूम करते वक्त हम ज्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। क्या ये खबर सिर्फ सनसनी फैला रही है? क्या ये लोकलुभावन दावों को बिना जांचे परखे आगे बढ़ा रही है? क्या ये मुद्दे की जटिलता को सामने ला रही है या उसे सरल बना रही है?
बिल्कुल। और शायद एक और बात, ये समझ हमें अलग अलग राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों के प्रति थोड़ी ज्यादा सहानुभूति या समझदारी दिखाने में मदद कर सकती है। ये समझने में कि लोकलुभावन अपील के पीछे अक्सर असली चिंताएं, असली दुख, असली शिकायतें हो सकती हैं, भले ही हमें उनके सुझाए समाधान सही न लगें। इससे शायद हम दूसरों को सिर्फ नासमझ या कट्टर कहकर खारिज करने की बजाय बातचीत की गुंजाइश बना सकें।
सही कहा। और बड़े स्तर पर देखें तो ये नेताओं, पार्टियों, पॉलिसी बनाने वालों को सोचने पर मजबूर करता है कि वो लोगों से बेहतर तरीके से कैसे जुड़ें, उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करें। सिर्फ लोकलुभावनवाद का डर दिखाकर काम नहीं चलेगा, लोकतंत्र को ही बेहतर बनाना होगा।
तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या रहा? आपके लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि कैज़ मुंडे का विश्लेषण हमें लोकलुभावनवाद को एक बहुत ही जटिल, बहुस्तरीय चीज की तरह देखने में मदद करता है। ये ना तो सिर्फ शैतान है जिसे खत्म कर देना है, और ना ही कोई मसीहा है जो सारी समस्याओं का हल कर देगा। ये आज के लोकतंत्र की अपनी चुनौतियों, अपनी कमियों और अपने विरोधाभासों का एक प्रतिबिंब है।
हाँ, बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि ये हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई बनी बनाई परफेक्ट चीज़ नहीं है जिसे हमने पा लिया और अब बस आराम से बैठना है। नहीं, इसे लगातार सींचने की, बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इसे ज़्यादा समावेशी, ज़्यादा जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है। लोकलुभावनवाद का उभार शायद इसी बात का संकेत है कि हमने कहीं ढील दे दी है, और इसका जवाब शायद बेहतर, मजबूत, ज्यादा संवेदनशील लोकतंत्र में ही छिपा है। मूडे का काम हमें भावनाओं से परे जाकर ठंडे दिमाग से इस चुनौती को समझने का एक बहुत जरूरी वैचारिक औजार देता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।